तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या। और पिछले बुधवार को जो भगवान ने सृष्टि का चक्र बताया, इस पर हमने चर्चा की। और इस चक्र के 8 बिंदु मनुष्य शरीर, जिसकी उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ हमारे नियत कर्म करने से होता है, और नियत कर्म की व्याख्या वेदों में दी गई है, जिसे भगवान ने शब्द ब्रह्म भी कहा। और शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए, जैसे कि साधारणतः कोई भी शब्द अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर ब्रह्म जो कि भगवान है, ये कह सकते हैं कि भगवान और भगवान की जो वाणी है उसमें कोई अंतर नहीं, परंतु फिर भी जो शास्त्र हैं वो ये कह सकते हैं कि भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तब ये जो चक्र है, इस चक्र को सृष्टि चक्र भगवान ने कहा है कि इस पूरी सृष्टि में यदि हमें समझना है, हमें अर्थात हम मनुष्यों को यदि समझना है इस पूरी सृष्टि में कि हमारे लिए क्या निर्धारित है, वर्तमान में, भूत में अर्थात पास्ट में क्या हुआ हमारे साथ, वर्तमान में क्या होना चाहिए, भविष्य में क्या होना चाहिए और वर्तमान में क्या हो रहा है, तो ये इस पूरे चक्र में बताया गया है। तो अब मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछें, इस सृष्टि चक्र को सुनने के पश्चात, जानने के पश्चात अर्जुन का प्रश्न है, तब फिर वो व्यक्ति जो इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करते उनके विषय में क्या कहना है? What about those living entities or human beings, those who do not follow this cycle which is recommended and established by you? तो अब अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर भगवान आज के श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। तो क्योंकि चक्र की चर्चा चल रही है, इसलिए आज के श्लोक में भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है चक्रम, साइकिल। तो भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र जो कि मेरे द्वारा प्रवर्तित, कौन सा चक्र? जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, सृष्टि चक्र। न अनुवर्तयति हय, न अनुवर्तन, कि जो जीव इस सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करते, पालन नहीं करते, तो उनका जीवन क्या बताया गया है? अघा, अघायुर, अघ से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ, इंद्रियाराम, केवल इंद्रिय भोग के लिए जो जीवन जी रहे हैं वो है उस कैटेगरी में। मोघम पार्थ सजीवती, हे पार्थ, हे अर्जुन, उनका जीवन व्यर्थ है। तो ये एक एक लाइन का संस्कृत ट्रांसलेशन इस प्रकार से है और श्रील प्रभुपाद का पूरा इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। काफी स्ट्रांग और पावरफुल श्लोक है आज का, क्योंकि अर्जुन ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा है जो कि ये सृष्टि चक्र का पालन नहीं करते। तो क्योंकि आज और पिछले श्लोक को लेकर भगवान की व्याख्या इस चक्र को लेकर है, तो काफी स्लाइड्स में आप चक्र देखेंगे आज, तो चक्कर में मत पड़े जाना। इन सब चक्रों से बाहर निकलने के लिए भगवान ने ये सारे चक्र दिए। ये समझना चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर जो अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशंस हैं जिसको आज हम देखेंगे, वो सारे कैलकुलेशंस शास्त्रों के अनुसार साइक्लिकल हैं। उसकी व्याख्या हम करेंगे, घबराइए मत। तो सबसे पहले यदि हम ले काल चक्र, तो आजकल लोगों का मानना क्या है कि समय जो है, इसको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा, दे थिंक टाइम इज कैलकुलेटेड इन अ लीनियर फैशन। व्हाट इज लीनियर फैशन? या स्ट्रेट, पॉइंट ए पॉइंट बी लाइक दैट। बट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स टाइम इज कैलकुलेटेड इन अ साइक्लिकल फैशन, इसलिए उसको क्या कहा गया है? काल का चक्र। तो लीनियर और साइक्लिकल दोनों में अंतर क्या है? यस, इन साइक्लिकल या काल चक्र में यदि एक समय गया है तो वो समय वापस आएगा। तो इस प्रकार से आने वाला कल जाने वाला है, इसलिए कल बोलते हैं ना। कल, कल के दो अर्थ होते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट पे समझ में आएगा। कल मतलब यस्टरडे, उसको भी कल बोलते हैं, और आने वाला जो है उसको भी कल बोलते हैं। टुमारो इज ऑल्सो कॉल्ड कल, यस्टरडे इज ऑल्सो कॉल्ड कल। तो अब कालचक्र, देखिए दोनों बातें भगवान बता रहे हैं कि एक है वो चक्र जिसके द्वारा हम काल चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान पिछले श्लोक आज के श्लोक में संक्षिप्त रूप में ये बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो मेरे द्वारा प्रस्थापित इस सृष्टि चक्र का पालन करता है वो काल चक्र से मुक्त हो सकता है। तो हमारे पास दो चॉइस है, सृष्टि चक्र या काल चक्र। तो अब ये जो काल चक्र है, अलग अलग प्रकार से हमारे शास्त्रों में इस काल चक्र को कैसे समझाया है। हमने बहुत बार सुना होगा, महाभारत सीरियल में पहले आता ना घूमता हुआ, समय, मैं समय हूं, तो बहुत हमको शांति लगती थी। हालांकि वो जो समय घूम रहा है वो हमको यहां पर इस भौतिक संसार में हमारी शांति भंग करने के लिए घूम रहा है, तो हमको सुनते हुए कितने शांति से घूम रहा है और जो आवाज इतनी अच्छी लगती थी। इसलिए समय, इसके विषय में बताया गया है कि ये जो पृथ्वी, अभी पृथ्वी इस समय, ये पृथ्वी एक चक्र में घूम रही है। हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम शांति से अपनी कुर्सी पर बैठे, क्या कहां कुछ क्या घूम रहा है। हाँ, मन घूम रहा होगा हमारा, पता नहीं कहां कहां, लेकिन ये पृथ्वी एक स्पीड पर घूम रही है, और ये जो रफ्तार से ये पृथ्वी घूम रही है, ये समय की रफ्तार है। तो इसलिए चाहे हम वो ऊपर टंगी घड़ी को बंद कर दें और हम सोचें कि भाई मैंने तो काल को वश में कर लिया, चाहे इस पूरी सृष्टि की सारी घड़ियों को हम बंद कर दें, परंतु पृथ्वी का जो समय काल है वो निरंतर बिना अंतर के निरंतर चलता रहता है। तो कालचक्र की शुरुआत यदि हम देखें तो सबसे पहले प्लैनेटरी साइकिल की सृष्टि का निर्माण हुआ, और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, ब्रह्म अंड के रूप में, यूनिवर्स जिसे अंड के रूप में या अंडे के रूप में कहा गया, इसलिए उसको ब्रह्मांड बोला गया। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये जो ब्रह्मांड है वो फ्लैट है, इसलिए वो लोग क्या बोले, लीनियर, एवरीथिंग इज लीनियर, फ्लैट है। और शास्त्रों में ब्रह्मांड के विषय में, क्योंकि नाम ही देखिए ब्रह्म अंड, सो इट इज एग शेप्ड, अगेन चक्र, इट इज स्पेरिकल, साइक्लिकल लाइक दैट। तो अब यदि हम प्लैनेटरी साइकिल देखें तो प्लैनेटरी साइकिल, ये जो चक्र है ये तीन बिंदुओं से बना है। जैसे ये मत समझिए कि अभी ज्योमेट्री क्लास यहां पर होने वाली है कि ये तीन बिंदु और फिर हम वो उसका सर्कल बना रहे हैं कि एक बिंदु लेकर। तो यदि प्लैनेटरी साइकिल को हम लें तो प्लैनेटरी साइकिल जो है वो तीन बिंदुओं से बनी है, अपर प्लैनेट्स, लोअर और मिडिल, और ये सब कालचक्र की व्याख्या है। क्योंकि ये सारे जो ग्रह हैं, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये कालचक्र के अधीन है। एवरीथिंग इज विद इन द कालचक्र, और कालचक्र किसके अधीन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वो। कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान ने 11वें अध्याय में भगवद गीता में कहा है, हे अर्जुन मैं स्वयं साक्षात ये काल हूं। तो शुरुआत, अब इसका सबका कनेक्शन है ये ध्यान में रखिएगा, कि हमने तो सुना होगा, ठीक है भाई पता है कि अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, ये तो हम सुने होंगे। लेकिन हम यदि कालचक्र के कॉन्टेक्स्ट में सबका कनेक्शंस देखें, कि हमारा कनेक्शन, कर्मों का कनेक्शन, प्लैनेट्स का कनेक्शन, यूनिवर्सल क्रिएशन, सब इंटरकनेक्टेड है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। अब यूनिवर्सल साइकिल, तो यूनिवर्सल साइकिल के भी तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु से ये साइकिल बना है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। तो अब हमने ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का जो साइकिल है वो शास्त्रों में बताया गया है कि उनका क्रिएशन, सृष्टि, फिर उनका संहार और उसके बीच में पालन, और जो तीन गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु वो पालन करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि और शिव जी वो संहार करता। अब आगे जाएं तो इन प्लैनेट्स में जो कि ब्रह्मांड के अंदर हैं, जो कि यूनिवर्सल साइकिल के अधीन है, तो उसमें चार युग आ जाते हैं। अब हम भौतिक संसार एकदम ये कहेंगे कि वो मैग्नीफाइंग लेंस से और ज्यादा हम उसको जूम इन करके देख रहे हैं। तो अभी कहां आ गए हम लोग, ब्रह्मांड से ग्रह में, ग्रह के जो साइकिल है क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, और फिर मटीरियल जो क्रिएशन है उसके अंदर ये जो चार युग साइकिल हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसको साइकिल क्यों कहा गया है? क्योंकि सतयुग जब खत्म होता है तो सतयुग खत्म होते होते त्रेता युग के जो लक्षण हैं वो सतयुग के अंत में दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सतयुग में बताया गया है कि पाप नाम की चीज कहीं पर देखने सुनने भी नहीं मिलती थी और धर्म का पालन सब जगह, जैसे आजकल हम देखें सबके पास मोबाइल, चाहे वो किसी बड़े कंपनी का सीईओ चाहे गवंडी, सबके पास मोबाइल है ना, तो उसमें कोई आश्चर्य होता है हमको? सबके पास है ना मोबाइल, तो वैसे ही सतयुग में धर्म का पालन करने वाले कोई आश्चर्य नहीं करता था, अरे तुम तिलक लगा के तुम मंदिर जाते हो। तो कलयुग का हाल क्या है कि कोई तिलक लगा के मंदिर जा रहा है तो बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिर वो भी छुट्टी के दिन संडे। तो सतयुग के अंत में धर्म की ग्लानी दिखना शुरू है, तो वो लक्षण है कि जो अगला युग है, और अगला युग वो थोड़ा अब धर्म के मामले में कच्चा, त्रेता युग। जैसे बताया गया है कि सतयुग में जो राक्षस हुआ करते थे वो अलग अलग प्लैनेट्स में हुआ करते, उनके प्लैनेट ही अलग थे, सतयुग के राक्षसों के प्लैनेट्स अलग थे, और त्रेता युग में वो एक ही प्लैनेट पर आ गए। मतलब दैव असुर की देवता और असुर, ये जो गुण हैं ये एक ही प्लैनेट, जैसे रामचंद्र जी और रावण, ये कौन से युग में आए? त्रेता युग में, तो एक ही प्लैनेट के ऊपर। और द्वापर युग में डिवाइन और डेमोनियक, सुर और असुर, ये एक ही फैमिली में आ गए, पांडव कौरव। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रोग्रेस हो रहे हैं अभी, ये डिग्रेशन है। और कलयुग में बताया गया है कि एक ही हृदय में, एक ही हृदय में आसुरी गुण भी हैं और एक ही हृदय में दैवी गुण भी है, दोनों हैं। और फिर कलयुग में हम देखें कि कलयुग जैसे बढ़ रहा है तो उसमें अधर्म जो है वो बढ़ रहा है और धर्म कम होता हो रहा है। तो त्रेता युग में, त्रेता युग के अंत में द्वापर युग के लक्षण दिखाई देना शुरू हुए, और फिर द्वापर युग के अंत में कलयुग के लक्षण दिखाई देना शुरू हुए। इसलिए कलयुग, हम जो कलयुग के हैं निवासी, हमारे लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ के रूप में, व्यासदेव जी ने ये सब कुछ हमारे लिए लिखा, नहीं तो सतयुग में ग्रंथ वगैरह लिखित फॉर्म में थे ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी कोई ग्रंथों को लिखित फॉर्म में होने की, क्योंकि वहां पर सतयुग के जो लोग उनको श्रुतिधर कहा गया। श्रुतिधर का अर्थ है कि एक बार जो कह दिया धारण कर लिया, उसको परमानेंटली उनके हार्ड डिस्क में वो रजिस्टर हो जाता था। कलयुग में उल्टा, कि बोलने के बाद भी, हजार बार बोलने के बाद भी, अच्छा भगवत गीता किसने लिखी? तो कलयुग में, क्योंकि प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, सब कुछ मंद है, स्मृति बुद्धि भाग्य सब कुछ मंद, आयु भी मंद, तो इसलिए हमारे लिए ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत ये भगवान ने प्रस्तुत कर दिया। और हरिनाम संकीर्तन, कि कोई और तप तो होने वाला है नहीं इनसे, कोई त्याग तपस्या सब आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो बस बैठ कर केवल हरि नाम लो। अब फिर होता क्या है कि सृष्टि जो हमने वो साइकिल देखी, सृष्टि की साइकिल क्या थी कि जब क्रिएशन हुआ, उसका मेंटेनेंस हुआ, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, तो साइकिल के अनुसार फिर क्रिएशन होना है ना। तो वैसे ही सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत के बाद जब प्रलय होता है, जब पूरी सृष्टि महाविष्णु इनके शरीर में फिर चली जाती है और जब पुनः सृष्टि होती है तो सत्युग प्रारंभ होता है। और फिर इस प्रकार से जब तक के जीव भगवत धाम नहीं जाते, उनको ये चार युगों के साइकिल में घूमना पड़ता है। तो अब हमने चार युग ले लिए, अब चार युग के अंदर हम जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, हमारे कर्मों का साइकिल, तो सब पिछली स्लाइड भी ध्यान में रखना, यूनिवर्सल साइकिल, प्लैनेटरी साइकिल, युगा साइकिल और कार्मिक साइकिल। तो कर्म साइकिल क्या है, तीन बिंदुओं से, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। बहुत सिंपल है समझना ये सब, हालांकि जब हमारा जीवन इसमें घिर जाता है तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है, लेकिन यहां पर बस तीन तीन चार चार बिंदु दिख रहे हैं हमको, उनसे सर्कल बना है। तो तीन प्रकार के कर्म है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है और कोई मॉकटेल पी रहा है, मिक्स्ड कर्म। अब हम देखेंगे कि कर्म और प्लैनेटरी साइकिल का कनेक्शन क्या है। प्लैनेटरी साइकिल याद है आप लोगों को, कौन से तीन बिंदु थे, अपर प्लैनेट, लोअर प्लैनेट्स और मिडिल प्लैनेट्स। तो अब कर्म के अनुसार प्लैनेट का कनेक्शन क्या होता है उसका, जो पुण्य कर्म करते हैं वही केवल स्वर्गवासी कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा। हमको लगता है जो भी मरा ऊपर ही जाता है, नहीं। जो पुण्य कर्म में लगे हैं उनके लिए अपर प्लैनेटरी सिस्टम निर्धारित है, जो पाप में वो लोअर। तो ये जो तीन डिवीजन हैं, इसके अंदर ये जो लोअर प्लैनेट्स, पूरे एक एक प्लैनेट्स की व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। ये नर्क जो लोक हैं, हेलिश प्लैनेट्स जो नीचे हैं, तल, अतल, सुतल, तलातल, अलग अलग प्रकार के ये नाम भी इनके एकदम भयावह, कुंभी पाक, नरकों के अंदर भी रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, ये सब एकदम डेंजर डेंजर नाम है इनके। और अगर अपर प्लैनेट्स के नाम आप देखो तो गंधर्व लोक, किन्नर लोक, अमरावती, सत्यलोक ब्रह्मा जी का, एकदम नामों में वो मधुरता दिखती है। और जो मिक्स्ड कर्म करते हैं वो लोग फिर यहां पर ही, हमारे जो सिक्स सेशन कोर्स में बहुत से प्रश्न थे कि यदि मनुष्य जन्म अभी मिला है, ये खत्म होने के बाद फिर से मनुष्य मिलेगा कि नहीं, क्यों नहीं मिलेगा अगर मिश्रित कर्म किया है। मिश्रित किसका कर्म, पुण्य पाप का मिश्रण। तो पुण्य पाप का मिश्रण जिसने किया है उसको फिर से इसी मिडिल प्लान, मिडिल प्लैनेट हम लोग का जो पृथ्वी इत्यादि ये सब मिडिल प्लैनेट्स हैं। इसमें देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोग जो मिडिल प्लैनेट में हैं हमारे लिए फायदा है, बाकी के अपर और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम की तुलना में हमारे लिए फायदा क्यों है, क्योंकि जो अपर प्लैनेट्स है वहां पर केवल भोग विलास चलता है और लोअर प्लैनेट में केवल दंड। तो जो भोग विलास में लगे हैं स्वर्ग में, उनको, उनके पास टाइम नहीं भक्ति करने का, वो एकदम सोमरस में, अप्सरा इत्यादि उसमें मग्न है। और जो नर्क में है वो तो बहुत ज्यादा बिजी कर रखा उनको। तो ये उसी प्रकार से है जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति काम करता है मंडे टू फ्राइडे, ऑफिस में काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और फिर सैटरडे संडे जाता है लोनावाला छुट्टी मनाने, तो सैटरडे संडे वहां पर कोई कमाई नहीं हो रही उसकी, जो कमाया उसने सब गंवा रहा है वहां पे। तो अब है क्या कि अर्थ प्लैनेट पर हम नौकरी कर रहे हैं, जो कमाते हैं पुण्य कर्म उसको भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां पर कोई पैसे, वहां पर कोई कर्म नहीं कमा रहा है। जैसे कि लोनावाला में कोई जाता है तो वहां पर केवल खर्चा होता है, और जैसे ही पॉकेट खाली हुई फिर वापस ऑफिस आना पड़ता है ना, तो मंडे को वापस ऑफिस आना पड़ता है क्योंकि पॉकेट खाली हो गई, अब वापस पॉकेट भरने के लिए। तो वैसे ही जब स्वर्ग में कोई जाता है और उसके पुण्य क्षीण हो जाते, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे उसके पुण्य वहां पर पूरा, जैसे ही वो उसने एंट्री की, एंट्री करते उसने स्वर्ग के एक पुष्प को भी सूंघ लिया तो उसका मीटर चालू हो गया, इसका ये पुण्य खत्म खत्म खत्म। फिर उसने एक पैग सोमरस का पी लिया, उसके इतने पुण्य खत्म। तो जैसे जैसे, तो सोचिए कि एक तो स्वर्ग जाने के लिए कितना पुण्य करना पड़ता है जीव को, और वहां टिकने के लिए, जैसे कि यहां से अगर कोई लोनावाला जाता है तो लोनावाला जाने के लिए पैसे लगेंगे ना, वहां पर कोई ससुराल तो नहीं है उसका, कोई अगर है तो ठीक है। तो यहां लोनावाला जाने के लिए उसको छुट्टी मनाने के लिए पैसे लगेंगे, फिर वहां पर जो भी कुछ फरियाज में जो भी होटल में जाकर खाएगा पिएगा इधर उधर जाएगा, सब जगह पैसे वैसे तो लगे, तो वो पैसों की तुलना किसे करें, पुण्य से। तो स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य और वहां पर टिकने के लिए पुण्य, और जैसे ही वो मीटर में उसका कम होते जा रहा है तो उसको स्वर्ग के कोने में ले जाते, हमने उसकी चर्चा की थी, फिर वहां से उसको अलविदा, फिर वापस यहां पर। अब मान लो कि हम कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है और पैसे कमाकर वो वहां पर भोगना चाहता है, और वो व्यक्ति मंडे से फ्राइडे उसने कोई कानूनन जुर्म किया, तो कानूनन जुर्म करेगा तो फिर सैटरडे संडे कहां जाएगा, लोनावाला नहीं, जेल, तो वहां जाएगा। अब वहां पर भी पैसे नहीं कमा रहा है वो, है ना, तो न तो लोनावाला में पैसे कमा रहा है ना जेल में पैसे कमा रहा है, तो लोनावाला में तो पैसे गंवाए और जेल में क्या हुआ, वहां पर केवल जो उसको सेंटेंस दिया गया है वो उसको भुगत रहा है। तो जो एक्चुअल कर्म वो या पैसे या जो भी कुछ वो कहां पर कमा सकता है, पृथ्वी पर। तो इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली क्यों हैं पृथ्वी के जीव, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो पाप पुण्य के भी परे हैं, और वो है अकर्म, जो हमें ये संसार के सेंट्रल जेल से तो छोड़ दीजिए, ये स्वर्गवास जो है वहां से भी ऊपर वैकुंठ वास करा सकता है। इसलिए ये बहुत ही लाभदायक है यहां पर रहना। तो ये है कनेक्शन कर्म और प्लैनेटरी साइकिल का। अब हम जो मनुष्य, क्योंकि कर्म का जो चक्र है केवल मनुष्यों के लिए निर्धारित है, पशुओं के लिए नहीं, तो अब हमें कर्मों के द्वारा ये जो शरीर मिला है, ये शरीर कर्मों के अनुसार इसके 6 बिंदु बताए गए, या 6 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले शरीर का पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ बुद्बुदम, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो बुलबुले होते हैं उसमें से ये शरीर हमारा बनता है मां के गर्भ के अंदर। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है बर्थ, जन्म हुआ। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, अब जन्म होने के पश्चात फिर शरीर बढ़ता है, उसके अंदर वृद्धि होती है। और फिर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है कि वृद्धि होने के बाद फिर कुछ समय के लिए वृद्धि रुक जाती है, फिर स्टेबिलिटी। चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, एक शरीर अन्य शरीरों को पैदा करता है, ये उस शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसने एक और नया ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया, है कि नहीं। जैसे पेड़ का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि बीज से पौधा बना, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, फल के अंदर बीज, फिर से बीज गिरा, एक और पेड़ उग गया, वापस चालू हुआ। तो रिप्रोडक्शन, अब उसके बाद फिर गाड़ी ढलान से नीचे जा रही है, अब ओल्ड एज, ड्विंडलिंग, बुढ़ापा, ये फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप लोग जानते होंगे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डेथ। तो ध्यान में रखिए, प्लैनेटरी साइकिल, यूनिवर्सल साइकिल, युगा साइकिल, कार्मिक साइकिल, कार्मिक प्लैनेटरी साइकिल, और उसके अंदर हमारा शरीर, जिसके अंदर ये छह बिंदु से बना हुआ ये चक्र, हमारा शरीर रूपी चक्र इन छह बिंदुओं से बना हुआ। ये भी सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए। बाथरूम में आप देखते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कि पहले एक टूथब्रश होता है, फिर जब बड़ा होता है तो दो टूथब्रश आ जाते हैं बाथरूम में, फिर देखिए कितने सारे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से भारतीय बाथरूम लग रहा है ये, हम दो, हमारे चार। फिर बहुत सालों के बाद जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, वापस से दो टूथब्रश आ जाते हैं। फिर और सालों बाद एक ही बचता है, और उसके बाद मैं आपने देखा। तो ये एक और तरीका है जानने का कि हमारे जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन सब कैसे चलते रहते हैं। साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए साइकिल का भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम ऐसी साइकिल में बैठते हैं, फिर हमारे लिए साइकिल खरीद कर दी जाती है, फिर बाद में हम बड़े होते हैं तो खुद दोनों पहियों पर साइकिल, और उसके बाद में वापस व्हील चेयर, वो भी एक और साइकिल। तो ये एक और तरीका है लाइफ साइकिल, ये शरीर में हम जो हैं उसको जानने का। तो अब उपनिषद में, जैसे श्वेत श्वतारा उपनिषद एक है, जिसके अंदर ये उदाहरण हमने पहले भी अक्सर सुना है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में भगवद गीता में दिया है, ये फोटो भी भगवद गीता से ही है प्रभुपाद की। तो इसके अंदर ये रथ है, शरीर रूपी रथ, द चैरियट ऑफ आवर बॉडी, जिसके अंदर पांच जो घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा इत्यादि। और इस रथ को चलाने के लिए जो लगाम है, वो लगाम की तुलना हमारे मन से की गई है, और उस लगाम को जो सारथी अपने हाथों में पकड़ा हुआ है वो है बुद्धि। तो जनरली साधारणतः जो सारथी है उसके हाथ में लगाम होनी चाहिए, न कि सारथी लगाम के अधीन हो जाए। सो इंटेलिजेंस शुड बी गवर्निंग द माइंड। और फिर रथी कौन है, आत्मा। अब इसके आगे इस उदाहरण को समझें तो इस रथ के दो पहिए, फिर से आ गए हम, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने एवं प्रवर्तितम चक्रम, तो हम चक्र को छोड़ेंगे नहीं। तो अब इस रथ के दो चक्के, चक्के जरूरी है ना, चाहे आपके पास अच्छे घोड़े हो, चाहे लगाम भी अच्छी हो, सारथी भी अच्छा हो, लेकिन चक्के नहीं तो फिर रथ आगे कैसे जाएगा। तो ये चक्के क्या हैं जो कि हमारे शरीर को एक योनि से दूसरे योनि में ले जा रहे हैं। एक जो चक्का है वो है त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये उसके स्पोक्स हैं, तीन तीन बिंदु या तीन स्पोक्स। और जो दूसरा चक्का है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप लोगों को लग रहा है सब डेंजर डेंजर चक्र हैं, सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो दो चक्के हैं, इन दो चक्कों से बना हुआ ये शरीर रूपी रथ है, पर हम पता नहीं कितने जन्मों में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमको लग रहा है कि कितना अच्छा घोड़ा गाड़ी की सवारी हो रही है। लेकिन ये जो चक्के हैं, ये हमको ऐसे ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर ले जाते हैं कि जिसके वजह से रथी को तकलीफ होती है। जितना रास्ता उबड़ खाबड़ है, जितना पहिया वो तकलीफ दे रहा है, उसके ऊपर निर्धारित करता है कि जो रथी है, आत्मा है, उसको कितनी तकलीफ होगी। अब ये जो फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, जैसे आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं मोहम पार्थ स जीवति अघायुर इंद्रिया रामो, कि जो केवल पापमय जीवन जी रहा है, जो चक्र बताया उसके आधार पर नहीं जी रहा, तो वो इस भौतिक संसार का जो वन है, फॉरेस्ट इंद्रिय राम, इंद्रिय भोग का जो वन है, उसमें प्रवेश करता है। अब बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की गई है महाभारत में, आपके सामने एक पहेली है, देखते हैं आप इस पहेली को सुलझा पाते हो कि नहीं। तो महाभारत ने हमारे सामने एक पहेली रखी है, और ये पहेली का कनेक्शन जो पिछला स्लाइड हमने देखा फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, तो इससे है। तो पहेली की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि एक व्यक्ति एक जंगल में जा रहा है जंगल का उपभोग करने के लिए। तो अब जंगल में वो किन किन अलग अलग प्रकार के घटनाओं के संपर्क में आता है, तो उसकी उसके पहेलियां बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जंगल में गया है तो जानवर तो होंगे वहां पर, और कैसे जानवर मिले उसको, खूंखार जानवर। तो खूंखार जानवर उसके पीछे 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 ये भागने लगा, खूंखार जानवर पीछे ये आगे भाग रहा है। खूंखार जानवर अलग अलग प्रकार के योनियों के जानवर, कोई छोटे कोई बड़े, कोई आवाज निकालते हुए, कोई उसको डराते हुए, ऐसे अलग अलग प्रकार के साइज के, शेप और साइज के जानवर। ये पहली पहेली है। दूसरी पहेली, वो भाग रहा है और सामने से उसने देखा कि एक बहुत कुरूप बदसूरत दिखने वाली डायन, पिशाची, विच, वो सामने से अटैक करने आ रही। तो आप इमेजिन कीजिए ऐसा जंगल, जंगल के अंदर पीछे क्या है, आगे क्या है। तो उसने साइड लिया, लेफ्ट या राइट साइड लिया। तो हुआ क्या कि उसने देखा कि अब उसके पीछे एक ऐसा हाथी जिसके 12 पैर और 6 सर है, ऐसा हाथी पीछे लग गया उसके। तो कहां जाए, अब जहां पर भी जाए ये सब कुछ वो महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो उसने देखा कि एक कुआं है, चलो कुएं में कूद जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं इन सब से। तो कुएं में कूद जाता है, तो कुएं में कूद जाता है तो क्या है, वो कुएं में कोई पानी नहीं है, इसको आता है तैरना, इसने सोचा कि पानी होगा, लेकिन कुएं में पानी नहीं। तो अब जैसे ही कूदा तो देखता क्या है नीचे, कि बहुत जहरीले सर्प पानी के बदले उस कुएं में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ बेटा, वो लोग महाप्रसादे गोविंदे गा रहे, जहरीले सर्प। तो अभी रास्ते में, अभी तक नीचे पहुंचा नहीं है, कहां, कुएं के नीचे तक नहीं पहुंचा है। तो होता क्या है कि एक टहनी, कमजोर सी टहनी उसको दिखती है, वो जो दीवार है कुएं की दीवार अंदर वाली, वहां से एक कमजोर सी टहनी उगी हुई है। कई बार आपने देखा होगा ना, हीरो जो होता है इतनी जल्दी मरता नहीं, उसको धक्का भी मार दिया तो कुछ ना कुछ हाथ में उसके वो डायरेक्टर उधर रख के रखता है, उसको पकड़ लेना। तो जो कमजोर सी टहनी है उसको पकड़ लेता है। तो अब क्या है, लटका हुआ है। अब ऊपर वो जो हाथी, छह मुंह वाला, 12 पैर वाला हाथी, और वो जो डायन बदसूरत दिखने वाली वो, और ये सारे खूंखार जानवर, ये लोग सब ऊपर से देख रहे हैं। ये इस पे लटका हुआ, नीचे वो जहरीले सांप नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से ये हाल, नीचे से ये हाल, और यहां पर एक टहनी का सहारा। बोलते ना डूबने वाले को तिनखे का सहारा, तो टहनी का सहारा। अब उसने देखा क्या कि वो टहनी के एक तरफ दूसरी तरफ दो चूहे, एक सफेद और एक काला, और टहनी को काट रहे हैं। जो पहले से कमजोर टहनी है उस टहनी को अब ये दो चूहे दोनों दोनों तरफ से काट रहे हैं। लेकिन हर समय आता ना लेकिन, इस दौरान हुआ क्या कि उसने देखा कि उस कुएं के ऊपर, ठीक कुएं के मुंह के ऊपर, एक पेड़ की टहनी जिसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है सीधे एंगल बना के इसके मुंह में। और इसे लग रहा है क्या क्या मिठास है, उसे लग रहा है कि ऐसा आनंद और कहां। तो ये पहेली आप बताइए क्या समझ में आया आपको, दी एंड, पिक्चर का एंड हो गया। तो जो सबसे पहले पहेली लेते हैं कि जो डेडली एनिमल्स, खूंखार जानवर, इसकी तुलना किससे की गई है। हाँ, ये खूंखार जानवरों की तुलना बीमारी से की गई है। कई जानवर बड़े बड़े हैं, कई जानवर छोटे छोटे हैं, है ना। इसलिए जैसे ही हम पैदा होते हैं या इस जंगल में प्रवेश करते हैं तो हमारे पीछे हमारे पिछले कर्मों के अनुसार छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, कभी कभी वो कॉकरोच वगैरह भी डरा देते ना हमको। तो वो क्या है, फ्लू, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये सब। और कई बार बड़े खूंखार जानवर कैंसर, टीबी, तो ऐसे खूंखार जानवर सब अलग अलग शेप साइज के पीछे पीछे लग जाते, जैसे ही पैदा होते हैं ये सब पीछे लग जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमको लगता है कि अभी तो कोई पकड़ा नहीं है मुझे, पीछे हैं। जैसे ही वो हमारा स्वास्थ्य नीचे जाता है वो लोग रेडी हैं पकड़ने के लिए, और हमारे कर्म के अनुसार रेडी है हमको पकड़ने के लिए। तो हम भाग रहे हैं, कई बार समझ में आ जाता है, डॉक्टर बता दे भैया देखो ये सब तुम्हारे पुर्जे कमजोर हो रहे हैं, ध्यान में रखो। तो हम लोग फिर ये जॉगिंग, ये योगा, फिर ये डाइट, वो ये सब कुछ करते हैं। फिर देखते हैं आगे से डायन आ रहे भागते हुए, इतना हमने सब कुछ किया जोखिम में ये सब डाल के, आगे से देखते हैं ये पिशाची आ रही है। तो ये क्या है, बुढ़ापा, जरा, बुढ़ापा, पीछे व्याधि, आगे बुढ़ापा या जरा जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो वो भागते हुए आ रही। तो इन दोनों से बचने के लिए हम लोग कहीं पे टर्न लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं ये हाथी, और ये हाथी क्या है, ये हाथी है हमारी आयु, जो किससे बना हुआ है, 12 महीने और 6 जो मौसम है। एक साल किससे बनता है, 12 महीने। तो ये जो हाथी है जिसके 12 पैर हैं और 6 सर हैं, 6 seasons and 12 months। तो ये समय हमको धीरे धीरे कहां ले जा रहा है, अंधे कुएं की ओर, तो वो हाथी को ऐसे लोकेशन पर इस जंगल में रखा हुआ था कि ये जब उस पिशाची से बचते हुए जब टर्न लेगा तो वो हाथी इसको डायरेक्ट करेगा, डरा कर कहां पर, अंधे कुएं में। तो ये जो हमारे साल हैं और ये जितने सारे मौसम उस साल के अंदर, वो हाथी के रूप में हमको उस अंधे कुएं, और वो अंधे कुएं की तुलना किसे की है, वो सर्प, काल सर्प नीचे जो वेट कर रहे हैं फिनिश करने के लिए। लेकिन उसके बीच में होता क्या है कि एक ऐसी टहनी प्रकृति हमको दिखा देती है, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो, देखो कुछ हो सकता है। तो वो है ये जो आजकल हम आधुनिक साइंटिफिक एडवांसमेंट जो किए हैं वो उस टहनी के समान है, उसको हमने पकड़ लिया कि चलो मृत्यु से बचने के लिए मैं यहां पर, ये डॉक्टर वो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट, उससे बचने के लिए, बुढ़ापा से बचने के लिए, हाथी से बचने के लिए, सांप से बचने के लिए, लेकिन वो टहनी इतनी कमजोर है और उसके ऊपर ये जो दो चूहे हैं, दिन और रात के चूहे, ब्लैक एंड व्हाइट रैट्स, दे आर ग्नॉइंग, ये काट रहे हैं उस टहनी को। तो जैसे हमारे दिन और रात बीत रहे हैं ये टहनी कमजोर हो रही है। लेकिन इस सब के दौरान बद्ध जीव जो है, जो आज भगवान कह रहे हैं इंद्रिया रामो, वो जो शहद टपक रहा है ना एग्जैक्ट, तो उसको लगता है कि इससे अच्छी स्थिति मेरी कौन सी हो सकती थी, कि भाई नसीब ने मेरे को देखो कहां पर लाकर लटकाया है, कि एग्जैक्टली वो जो दो बूंद हर दो घंटे में जो टपक रही है वहां से, वो भी हर दो घंटे में टपक रही है सीधे उसके जीवा पर, ऐसी जिंदगी और कहां, ऐसा आनंद और कहां। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो चक्र में महाभारत के अनुसार जो जीव फंसा हुआ है उसमें जो दो बूंद शहद उसके जीवा पर गिर रहा है, उसका जो आनंद उसे मिल रहा है, तो वो सोचता है कि यही वास्तविक उद्देश्य है मेरे मनुष्य जीवन का। ये नहीं जान रहा कि ऊपर कौन देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, नीचे कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये टहनी जिसको पकड़े हुए है उसकी हालत क्या हो रही है, कौन काट रहा है उसको, ये सब कुछ भूल जाता है जब शहद टपकता है उसके जीवा पर। सिमिलरली अ पर्सन हु इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड एंड फोकस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉरगेट्स द रियलिटी ऑल अराउंड हिम, ऑफ द एलिफेंट, ऑफ द विच, ऑफ द डेडली एनिमल्स, ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स, ऑफ द टू रैट्स डिस्ट्रॉइंग दैट वेरी क्रीपर विच ही थिंक्स इज गोइंग टू सस्टेन हिम टू एंजॉय दैट हनी विच इज ड्रिपिंग। ये महाभारत का उदाहरण है जिसके अंदर इस पहेली के द्वारा बताया है कि क्या हाल है ऐसे बद्ध जीव का। हरे कृष्ण। यदि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि वास्तविक स्थिति भी कई बार ऐसी हो रही है, ये एक्चुअल इमेज है हमारे इंडियन रेलवे ट्रेन का, जिसके अंदर लटक कर अपने आप को इंद्रिय आराम मान रहा है, वो सब जगह इतनी तकलीफें हैं लेकिन वो समझ रहा है कि किसी न किसी प्रकार से मैं अपने आराम की तैयारी कर लूं। लेकिन प्रश्न क्या है कि क्या ये वास्तविक रूप में आराम है और कितने समय तक, ये प्रश्न है। इसलिए यहां पर जो कहा गया है, लाइफ इज लाइक ग्रामर लेसन, समटाइम्स वी फाइंड द पास्ट परफेक्ट एंड समटाइम्स वी फाइंड प्रेजेंट इंटेंशन। ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में होता है ना, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, सो वी थिंक अवर पास्ट वॉज परफेक्ट बट बिकॉज द पास्ट वॉज नॉट परफेक्ट देयरफॉर द प्रेजेंट इज इन टेंस। अब भगवान ने आगे एवं प्रवर्तितम चक्रम आगे कहा अघायुर इंद्रिया रामो, तो हम अघायु इस शब्द को यदि विच्छेदित करें तो अघ और आयु तो अघ का अर्थ है पाप और आयु का अर्थ जन्म से लेकर अब तक का समय। तो अब यदि संस्कृत के इस पूरे शब्द को हम ले अघायु, तो इसका अर्थ क्या बनता है, जिसके पापों का भंडार उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, इसका अर्थ है अघायु। कि जितना वो जिएगा ये शास्त्र चक्र के बाहर, उतना उसका जो पाप है बढ़ता रहेगा। इसके पश्चात भगवान ने आज के श्लोक में कहा अघायुर इंद्रिय रामो। तो इसका विभाजन इस प्रकार से किया गया, इंद्रिय और आराम। तो आसान होगा समझना, लेकिन इंद्रिय का अर्थ ज्ञानेंद्रिय, जो पांच ज्ञानेंद्रिय, और आराम की व्याख्या की गई है। आराम का अर्थ है प्रसन्नता। तो हुआ क्या, पूरे इस शब्द का अर्थ इंद्रियों के सुख में प्रसन्नता लेने वाला वो कौन है, इंद्रिया रामो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसका जीवन केवल इंद्रिय में आराम ढूंढने के लिए बीत रहा है उसका जीवन क्या है, अघायु। वो बढ़ रहा है लेकिन उसका ग्राफ पापों का भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये अर्थ हुआ। अब एक और पहेली आपके सामने जगाए रखने के लिए, रिडल फ्रॉम नीति शास्त्र। तो इस पहेली में यह बताया गया है, आशा नाम मनुष्या नाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठंती पंगुवत। तो पहेली ये है कि एक ऐसी श्रृंखला है, आश्चर्य श्रृंखला, जिसके अंदर देखा गया है यया बद्धा, कोई बद्ध अवस्था में है। बद्ध अवस्था मतलब उसको चेन से बांधा गया, श्रृंखला उसको चेन से बांधा गया है, प्रधावंती, लेकिन वो भागता हुआ दिख रहा है। और दूसरा व्यक्ति मुक्त, वो मुक्त है, उसको कोई चेन वेन से बांधा नहीं गया, मुक्त तिष्ठंती पंगुवत, लेकिन एक जगह पर बैठा हुआ दिखता है। अब जनरली जो मुक्त है वो भागेगा ना, और जो बद्ध है वो एक जगह पर बैठा रहेगा क्योंकि बद्ध है, लेकिन उल्टा दिख रहा है कि जो चेन से पूरा बंधा हुआ है वो प्रधावंती भाग रहा है, और जो मुक्त है वो एक जगह पर बैठा। बोलो भाई, कैसे समझोगे इस पहेली को? हाँ, वो किस चीज से बद्ध है? हाँ, बद्ध उसकी जो श्रृंखला जो चेन है ना, वो उसकी भौतिक इच्छाएं। तो जो भौतिक इच्छाओं से बंधा हुआ है, ऐसी श्रृंखला से जो बंधा हुआ है, भौतिक इच्छाओं के वजह से, उस चेन के वजह से वो भाग रहा है यहां वहां। आप देखिए, जो इतना दौड़ धूप कोई इंसान करता है, लगा हुआ यहां वहां भागने में लगा हुआ, तो उसकी शुरुआत, उसका जन्म कहां से हुआ, उसके मन में इच्छा है, उसके मन में इच्छा है कि मुझे स्विट्जरलैंड में जाके चॉकलेट खाना है, स्विस चॉकलेट खाना है, बहुत फेमस है स्विस चॉकलेट। तो अब स्विस चॉकलेट खाने के लिए प्रधावंती, एक इच्छा हुई ना, तो अभी देखिए एक श्रृंखला उसको बांधती है, और उस एक श्रृंखला को पूरी करने के लिए उसको स्विट्जरलैंड जाके वहां की चॉकलेट, वहां के मौसम में क्या मजा आया। तो ये बताया गया है कि जो उस इच्छा से मुक्त है वो अपने घर में बैठा रहेगा, माला करेगा, क्योंकि इस इच्छा से मुक्त है। तो ये नीति शास्त्र की पहेली है। इसलिए यदि किसी को लग रहा होगा कि भाई इंद्रिय रामो, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया भगवान ने आज, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि इंद्रियों में आराम से जी रहा, नहीं, वो इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए प्रधावंती उसको जो इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, स्लॉगिंग जिसको बोलते हैं, फोमिंग एट द माउथ जिसको बोलते हैं, जस्ट टू एंजॉय दीज फाइव सेंसेस, व्हेन ही हैज टू फोम एट द माउथ जस्ट टू एंजॉय द फाइव सेंसेस। तो शास्त्र में ऐसा जो व्यक्ति जो सृष्टि चक्र के बाहर निकलकर केवल इंद्रिय आराम का जीवन जी रहा है, तो दो पशुओं के उदाहरण दिया गया है, गधे एवं ऊंट का उदाहरण दिया। तो गधे का उदाहरण दिया है कि जब गधा गधी के साथ शारीरिक संग करने जाता है तो गधी दुलत्ती मारती। एक्चुअली हम एक साउथ इंडिया यात्रा में गए थे तो आंखों से देखा, और वो गधी की जो दुलत्ती होती है वो इतनी जोर से दुलत्ती मारती है कि हम लोग कुछ आधे किलोमीटर दूर थे, इतनी जोर से आवाज आई उसकी दुलत्ती मारने की, लेकिन फिर भी व्यवसाय आत्मी का बुद्धि, इसलिए उसको गधा बोलते। तो शास्त्र में उदाहरण दिया है कि जो सामने उसको लात मारी जा रही है लेकिन फिर भी वो उसी में सोच रहा है कि इसी में मेरा आराम है, तो फिर उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है। और फिर ऊंट का उदाहरण दिया है। ऊंट का क्या उदाहरण है कि ऊंट क्योंकि ऐसे स्थानों में ज्यादातर दिखता है जहां पर पानी कम होता है, तो ऊंट जैसे रेगिस्तान में कांटे ज्यादा उगते हैं, तो ऊंट उन कांटों को खाता है और कांटों को खाने के वजह से उसके अंदर खून, सोचिए कांटों का सलाद अगर कोई दे तो क्या होगा अंदर का हाल। तो कांटों को खाने के वजह से ऊंट के मुंह में जो अब खून निकला तो उसको पीना शुरू करता है, तो उसको लगता है कि क्या आज का ड्रिंक है, बहुत स्पेशल ड्रिंक है आज का। सो दैट फूलिश कैमल डजंट रियलाइज दैट ही इज ड्रिंकिंग हिज ओन ब्लड एंड थिंकिंग दैट ही इज क्वेंचिंग हिज थर्स्ट। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स गिवन दैट अ पर्सन हु इज सिंपली एब्सॉर्ब्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन is foolishly thinking that is enjoying just like a donkey, just like a camel. इसलिए आज का श्लोक थोड़ा पावरफुल है, उदाहरण भी शास्त्र में ऐसे ही दिए गए। अब जो अंतिम पंक्ति है आज की लाइन, आज के श्लोक की, इसमें भगवान कह रहे हैं मोघम पार्थ स जीवति। तो हमारे आचार्यगण इसका ट्रांसलेशन किए हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये जो कौरव हैं ये मेरी सृष्टि चक्र के बाहर अधर्म का पालन कर रहे हैं, ये दुर्योधन पार्टी। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन इनको मारने में तुम्हारी तो भलाई जरूर इसमें होगी, इनकी भलाई छिपी है। अब देखिए ये एक अलग डायमेंशन में भगवान समझा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि कौरवों की भलाई मरने में है तुम्हारे हाथों। तो आज के श्लोक का उसके साथ क्या कनेक्शन है कि कौरवों को मारने के दो फायदे किसके, न अर्जुन के नहीं, कौरवों के। भगवान कह रहे हैं अघायु, अघायु शब्द ध्यान में रखना, भगवान कह रहे हैं उनके इस जन्म के पाप में कटौती होगी यदि तुम उनको मारोगे, नहीं मारोगे तो वो जिएंगे और वो भी अगर हस्तिनापुर का राज्य लेकर जिएंगे तो जितना पैसा उनको मिलेगा उससे वो करने क्या वाले हैं, वो कोई यज्ञ पूजा वगैरह नहीं करने वाले हैं। दुर्योधन उस पैसों को लेकर और पाप करेगा। उसको जितना जीने के लिए तुम समय दोगे उतना उसका पाप बढ़ा रहे हो। तुम जिम्मेदार हो। फिर सोचिए भगवान कौन से डायमेंशन में बता रहे हैं अर्जुन को कि सबसे पहला फायदा दुर्योधन को क्या होगा तुम्हारे हाथों मरने का, कि उसका जो पाप का मीटर है वो बंद कर रहे हो तुम, और दूसरा फायदा कि तुम्हारे हाथों मरेगा तो नरक नहीं जाएगा। ये मरना तो है ही इसको, आज नहीं तो कल। तुम नहीं मारोगे तो यदि काल चक्र के द्वारा मरने वाला है तो फिर यमराज तो रेडी है। तुम्हारे हाथ मरेगा, युद्ध भूमि में मरेगा तो फिर ये कभी नरक नहीं भुगतेगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम इनकी चिंता कर रहे हो ना, इनकी चिंता यदि इनको तुम सही मायने में उनकी चिंताओं से उनको मुक्त करना चाहते हो तो मारो इनको। ये दो कारण, बहुत डीप रीजंस भगवान दे रहे हैं अर्जुन को कि ये दुर्योधन जो अघायु और इंद्रिय राम हो, ऐसे जीवन में जो अपना जीवन मोहम पार्थ स जीव न जीवती, तो ऐसे व्यक्ति को मारना ही उसकी भलाई है। तो इसके संदर्भ में एक श्रील प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई कि एक प्रांत में एक साधु अपने शिष्यों के साथ गए, और हुआ क्या कि जैसे ही साधु वहां पहुंचे तो बहुत से उनको जब पता लगा कि अरे भाई साधु आए हैं तो आशीर्वाद लेने चलते हैं, तो अलग अलग लोग गए साधु से आशीर्वाद लेने। तो साधु और उनके जो शिष्य वहां पर मौजूद, तो सबसे पहले जो वहां का युवराज, उस राज्य का राजकुमार युवराज, वो आता है साधु से आशीर्वाद लेने। तो साधु आशीर्वाद देते हैं इसको कि भाई देखो जितना हो सके तुम अपने मृत्यु को टालो, ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। टू वॉट एवर एक्सटेंट यू कैन प्लीज पोस्टपोन योर डेथ। ये आशीर्वाद किसको दिया? प्रिंस को। फिर बाद में उसने आशीर्वाद लेकर वो चला गया। फिर उसके बाद में आया एक कसाई, तो कसाई आया तो कसाई को आशीर्वाद साधु देते हैं कि भाई तुम्हारा तो जीवित रहना और मरना दोनों ही खतरनाक है, तो न तो तुम जियो न तुम मरो। ये आशीर्वाद कसाई को दिया। फिर तीसरा एक तपस्वी योगी गया, तो योगी को साधु आशीर्वाद देते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके शरीर अपना छोड़ दो। और फिर चौथा व्यक्ति एक भगवान का भक्त गया, तो भगवान के भक्त को साधु आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे लिए जीना या मरना ये दोनों ही श्रेयस्कर है। तो जो डिसाइपल थे वो लोग भ्रमित हो गए कि ये अलग अलग आशीर्वाद क्यों। आज बहुत सी पहेलियां हैं देखिए आज के क्लास में, तो अलग अलग आशीर्वाद क्यों। तो फिर ये अपने शिष्यों को समझाते हैं साधु महात्मा, कहते हैं कि देखो वो जो पहले राजकुमार आया था उसका जीवन क्या है, ऐशो आराम का जीवन जी रहा है वो, मतलब पिछले पुण्यों के वजह से ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या आशीर्वाद दिया कि जितना हो सके तुम मृत्यु को पोस्टपोन करो, क्योंकि मरने के बाद तो तुम्हारी हालत खस्ता होने वाली है। अभी जो इतना तुम इंद्रिय भोग में लगे हो ना, मरने के बाद सब जो तुम इतना इंद्रिय भोग बिना सृष्टि चक्र के किए हो तो उसका फिर भरपाया करना पड़ेगा तुम, इसलिए जियो जियो जितना जी सकते हो। और फिर जब कसाई आया तो उसको मैंने देखा कि भाई अभी उसका नरकीय जीवन है, केवल जानवरों को मारना खून में रहना अभी नरकीय जीवन है, और मरने के बाद तो जरूर उसको नरक मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने उसको कहा तुम्हारा तो जीना मरना दोनों दुष्काल है। और फिर जो तपस्वी योगी आया तो उसको मैंने देखा कि भाई इसने इतनी तपस्या कर ली है तो जल्द से जल्द इसका शरीर शांत हो ताकि उसको इसकी तपस्या का फल तुरंत मिले। लेकिन जो भक्त, उसको आशीर्वाद दिया कि वो जो जी रहा है वो भी भगवान की भक्ति में ही जी रहा है और मरने के बाद भी भगवान की भक्ति में ही लगने वाला है। तो उसके लिए जीना मरना एक समान है, श्रेयस्कर, दोनों श्रेयस्कर। तो इसलिए इस कथा से क्या समझ में आ रहा है कि दुर्योधन का जो पाप का मीटर वो बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इसके पाप के मीटर को तुम खत्म करो, नहीं तो यमराज इसको ले जाएंगे, तो यम यातना जब ये भुगतेगा तो इसकी हालत बहुत बेकार होने वाली। और इसलिए भक्ति के 9 प्रोग्रेशंस बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 9 प्रोग्रेशंस, मतलब एक है कालचक्र, एक है सृष्टि चक्र, और ये है भक्ति का चक्र। तो इसके जो 9 प्रोग्रेशंस हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, भाव, तो एक एक करके मैं समझाता हूं। श्रद्धा से साधु संग, सबसे पहले जब कोई भक्ति करने की चेष्टा करता है तो श्रद्धा के स्तर पर, तो श्रद्धा के स्तर से फिर साधुओं का संग करता है। साधुओं के संग में उसे सिखाया जाता है कि कैसे भजन क्रिया में लगना है। भजन क्रिया में जब लगता है तो अनर्थों की निवृत्ति होती है, ये नेक्स्ट स्टेज। अनर्थों की निवृत्ति होती है तो डिटर्मिनेशन या निष्ठा की स्टेज पर आता है। वहां से फिर भगवान के प्रति रुचि जागृत होती है, रुचि के पश्चात आसक्ति, आसक्ति के पश्चात भाव, और अंततः भगवान के प्रति प्रेम। तो ये जो प्रेम है, देखिए कहां से घूम के अंत तक कहां पहुंचता है। कोई अगर बोलता है कि अरे मेरे तो प्रेम है भगवान के प्रति, तो क्या ये सब स्टेजेस को क्रॉस किया है वो? तो ये है 9 प्रोग्रेशंस ऑफ द साइकिल ऑफ भक्ति। और जो प्रेम के स्तर पर आता है, ये नहीं कि उसकी श्रद्धा नहीं, तो वापस से क्या करता क्या है वो भक्ति में, जो शुद्ध प्रेम में है भगवान के, उसके अंदर वो शुद्ध श्रद्धा है, वही साधुओं का संग करता है, वापस भजन क्रिया में लगता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल उसकी चलती है। और भगवान अब 2 शब्दों का प्रयोग किए हैं आज के श्लोक में, यदि आप ध्यान दिए होंगे। भगवान आज के श्लोक में कहें, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति हय। तो 2 शब्द कौन से हैं? प्रवर्तन और अनुवर्तन। तो प्रवर्तन का अर्थ है स्थापित करना और अनुवर्तन का अर्थ है पालन करना। तो भगवान ने पिछले श्लोक में 3.15 में क्या कहा था कि ये चक्र मेरे द्वारा प्रवर्तित है, और आज के श्लोक में अनुवर्तन, इसका जो करता है और जो नहीं करता। तो इसलिए हम देखें शिशुपाल, शिशुपाल का जो वध हुआ, शास्त्र आचार्य हमारे बताते हैं कि भगवान ने चक्र से किया। ध्यान में रखिए, आज के पूरे प्रवचन में चक्र को नहीं छोड़ा गया। तो भगवान ने चक्र से, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। तो हमारे आचार्य कहते हैं क्यों चक्र से वध किया, क्योंकि शिशुपाल सारे राक्षसों में एक ऐसा राक्षस था जो भगवान की सृष्टि चक्र का विरोध करता था। तो इसलिए उसका वध भी भगवान ने अपने ऐसे चक्र से किया, सुदर्शन चक्र से। अब परीक्षित महाराज, जो कि न केवल भगवान के सृष्टि चक्र का पालन किए, बल्कि जो भगवान के भक्ति चक्र का पालन किए, तो परीक्षित महाराज को कौन सी ख्याति दी गई? चक्रवर्ती। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट रहे। और कौन से चक्रवर्ती? वो वाले नहीं, हमारे एयरफोर्स में कहा जाता आज भर्ती कल चक्रवर्ती, वैसे नहीं, जिन्होंने बहुत भक्ति में परिश्रम कर ऐसे स्तर पर वो आए, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। और परीक्षित महाराज के पद चिन्हों पर हम कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद को भी ये ख्याति प्राप्त हुई, चक्रवर्ती श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी के 14 से भी ज्यादा बार चक्र लगाए। श्रील प्रभुपाद, वाई वी कैन कॉल हिम चक्रवर्ती, बिकॉज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ परीक्षित महाराज ही वेंट अराउंड द ग्लोब मोर देन 14 टाइम्स, बट फॉर वॉट? सो दैट ही कैन रिमूव ऑल ऑफ अस फ्रॉम द काल चक्र, फ्रॉम ऑल द चक्रस विच वी डिस्कस्ड, द प्लैनेटरी, द कार्मिक, द यूनिवर्सल साइकिल, द मिक्सचर ऑफ प्लैनेटरी एंड कार्मिक यूनिवर्सल साइकिल, ऑल ऑफ दैट युग साइकिल, बाय गिविंग अस दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, बाय गिविंग अस द कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम। तो ये है आज के इस श्लोक का सम एंड सब्सटेंस, जिसमें भगवान चक्र के विषय में कहे, और अंततः हम देख सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने यही श्लोक के विषय में बताया हुआ जो चक्र है उसे हमें दिया, समझाया, और काल चक्र से मुक्त होने का ये नुस्खा दिया है। कौन सा? ये जो जो बीड बैग में हम बीड्स रखते हैं ना, ये बीड्स भी कैसे हैं देखिए, चक्र के इसमें। तो ये कहा गया है कि जितनी बार इस चक्र को हम घुमाएंगे, कौन से चक्र को? ये माला के चक्र को जितनी बार हम घुमाएंगे, उतनी बार हमारे आने वाले जितने भी कर्म हम योनियां हमारे लिए निर्धारित हैं, उनसे हम एक एक करके मुक्त होते रहे। द मोर वी गो अराउंड चैंटिंग अवर राउंड्स, द मोर वील फ्री आरसेल्स फ्रॉम द राउंड ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, आज के श्लोक में कौन सा राम था? इंद्रिय रामो। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा रामो हैं, जो आत्मा में प्रसन्नता लेता है, उसके लक्षण क्या है। तो यदि हमें इंद्रिया रामो से आत्मा रामो बनना है, तो अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह आप लोग उपस्थित हो जाइएगा, 3.17 की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय।